టుడే సండే లా ఫిస్ట్ లెక్చర్ ఏజీ కుండల్ కృష్ణ ప్రభు
సార్ ప్రీతి భోజ్ కార్యక్రమం హార్దిక్ స్వాగత్ హై హృదయ సే ధన్యవాద్ హై కి ఆప్ ఇత్ని గర్మీ మే భీ కృష్ణ కథా ప్రేమ కథా రుచి అనురాగ్ కే కారణ పధారే హై తో ఆజ్ హమ్ భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కా दिव्य प्रादुर्भाव कलयुग में भी श्री नाम के रूप में हुआ है और सारे संत और शास्त्र एक मत से क्या कहते हैं हिंदी में डंके की चोट से कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम एव ही केवलम न अन्य नास्ति और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो फिर इतना हम जानते हैं शास्त्रों से संतों से सुनते हैं फिर भी हरि नाम में हमारा क्या कहते हैं महाप्रभु ने कहा अनुराग न अनुराग नहीं हो रहा है या तो फिर बहुत अनुराग होने के कारण ऐसा मनोभाव है कि मुझे अनुराग नहीं हो रहा ये भी है। जैसे बहुत पैसा कमाते हो कहते कुछ नहीं कमाते हाँ नहीं मांगेंगे भैया तुमसे मंदिर हो जाएगा तुम्हारे ऊपर नहीं है लेकिन ऐसे एक स्टाइल है। ऐसे भक्ति में भी जो बड़े प्रेमी होते हैं सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने वो दैन्यवश ऐसे ही सोचते हैं ऐसा ही सोचना चाहिए। तो चाहे सत्य हो असत्य हो न अनुराग वो मध्य में है कि अनुराग नहीं है। तो आइए उसी महाप्रभु से राधा कृष्ण मिलित अवतार चैतन्य तनु अब तो हरि नाम लो लागी कृष्ण प्रेम में पागल जिसको हम कहते ही है कृष्ण भाव विधुरा राधा भाव विधुरा तो दर्शन बंद कर दिए है अपना राधा के प्रेम में पागल वो है जगन्नाथ और कृष्ण के प्रेम में पागल राधा वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसी चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में दैन्यवश श्री हरि नाम के विषय में जो विश्व विख्यात वैष्णव जगत में श्री शिक्षाष्टकम है उसके द्वितीय श्लोक का कुछ आस्वादन करेंगे। हमारे आचार्यों ने उसके विषय पर क्या लिखा है उसको थोड़ा सुनेंगे और प्रयोजन यही है कि बस महामहिमा मंडित अनंत श्री शक्ति विभूषित हरि नाम में हमारी प्रीति हो जाए अनुराग हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख कमल से निकला है ये दिव्य शब्द अमृत। तो आप सभी वैष्णव प्राय याद है फिर भी दोहराते हैं ध्यान से सुनिए प्रेम से बोलिए हमारे पीछे नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित न स्मरणे न काल नियमित स्मरणे एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मे दृशमिहा जनिनानुराग नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि विषमिहा जनिनानुराग एक साथ में बोलते हैं सभी माता प्रभु जी सभी साथ में नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देव मे विषमिहा जनिनानुराग शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा नाम नाम भगवान का पवित्र नाम अकारी प्रकट हो गया बहुधा विविध प्रकार के निज सर्वशक्ति सर्व प्रकार की निजी शक्तियां तत्र उसमें अर्पिता भर दी है नियमित नियम स्मरणे स्मरण करने में न नहीं काल समय का विचार एतादृशी इस प्रकार की इतनी तब आपकी कृपा कृपा भगवन हे प्रभु ममा मेरा अपि यद्यपि दुर्देव दुर्भाग्य ईदृशम ऐसा है इह इस पवित्र नाम में अजनी उत्पन्न हुआ न नहीं अनुराग अनुराग अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में तृतीय भाग में 20वां अध्याय है अंतिम अध्याय अंत्य लीला अंतिम अध्याय और उसमें भी अंतिम श्लोकों में ये है 96 श्लोक है ये ओके तो अनुवाद में पढ़ता हूँ हे प्रभु हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य है अतः आपने आपके अनेक नाम है तथा कृष्ण गोविंद जिनके द्वारा आपने अपना विस्तार कर किया है आपने अपने इन नामों में अपनी समस्त शक्तियां भर दी और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं हे प्रभु यद्यपि आप अपने पवित्र नाम की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतितबद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं किंतु मैं इतना अभागा हूँ बोलिए कि आपके पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ अतः मुझ में जप करने के लिए कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा ऐसे सत्य बोलने में शर्म आती है लेकिन भगवान के सामने परिहारे भी मैं लज्जा ब्रूहे किम भूमे पुरुषोत्तम रूप गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु से कि प्रभु मैं आपके सामने बोलने लायक हूँ नहीं रामकेली में जब मिलन हुआ लेकिन मैं अपनी लज्जा को छोड़कर क्या करूं रह नहीं पाता हूं इसलिए आपके चरणों में दया की भीख मांगता क्योंकि कृपा करो दया करो आशीर्वाद दो ये बोलना इजी है लेकिन उस अनुसार हमारा व्यवहार वर्तन न होना तो ये मुंह में शोभा नहीं देता इस तरह का वाक्य और ये भी जो निर्मल हृदय है वो अनुभव करता है रूप गोस्वामी तो पवित्र साधु है दैन्य में महाप्रभु से कहते हैं कि मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करूं, इसके लायक भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लज्जा को छोड़ के आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप हम पर अनुग्रह कर, कृपा कर। तो ऐसे ही गिरधारी के सामने, उनके दरबार में या उनके प्रतिनिधि वैष्णव गुरु के सामने सत्य बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो उसमें नुकसान तो हमारा ही। गिरधारी तो ऐसे ही सब जानते हैं, जाहिर है मेरा हाल, प्रभु तुम्हें बताए बिना तुम्हें क्या बताओ, तुम तो सब जानते हो, अंतर्यामी नाम हमारो सब अंतर की जानो। भगवान कहते भी है कि मेरा नाम अंतर्यामी ऐसे ही थोड़ा पड़ा है, मैं सब जानता हूँ, इसी लोग हमें अंतर्यामी कहते, तुम ये नहीं जानते हो जो हमसे छुपा रहे। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि अपनी कमी तो हम छिपा लेते हैं और अपने गुणगान करने में तो कोई कमी नहीं रखते, उल्टा दूसरे के गुणगान भी अपने पर थोपते हैं कि मैंने किया। तो ये बद्ध जीव की दुर्दशा है। इसीलिए इन वैष्णव आचार्यों के सानिध्य में, उनके चरित्रों को हम संतों से, वैष्णव से श्रद्धा हृदय से सुनेंगे, तब वास्तविक भक्ति में हमारा प्रवेश होगा। क्योंकि भक्ति में मुख्य है दैन्य, विनम्रता, और यही भक्ति का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे सभी आचार्यों में ये है, खास करके साक्षात श्री भगवान राधा कृष्ण मिलितन उसी चैतन्य महाप्रभु, वो भी भक्त रूप में लीला कर रहे हैं, भक्त भाव को प्रकट है, तो भगवान वे भी राधा रानी के हृदय में, राधा रानी भक्तराज भक्त शिरोमणि है, तो उस हृदय से ये निवेदन कर रहे हैं। तो इन श्लोक को प्रतिदिन हम मंगला आरती के बाद बोलते हैं, और हमने सोचा कि आइए, जो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक संस्कृत में बोला गंभीरा में पुरी में, और फिर उन्हीं ने इन श्लोक की बंगला में व्याख्या की, अनुवाद किया, थोड़ा अपने भाव रस आस्वादन किया। बड़े प्रेमी पार्षद थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गंभीरा में, उनके सामने किया। ये तो कविराज गोस्वामी का कृपा है कि हम लोगों को भी ये सीक्रेट चर्चा सुनने कहने मिल रही है, और उसमें भी प्रभुपाद का विशेष। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव में अपनी ललिता विशाखा स्वरूप रामानंद और स्वरूप रूप क्या बात करते हैं, उसमें तो ब्रह्मा का भी प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा शिव भी नहीं जानते, तो जीव क्या चीज है साधारण। लेकिन ये तो उन्हीं की मंजरिया, मतलब ये ललिता भी सखी, सखियों की और सखियों का अनुगत्य करने वाली रूप सनातन मंजरिया, भक्तिविनोद ठाकुर आदि कमल मंजरियों की कृपा है, और उस परंपरा से हम इन केन प्रकार में जुड़ गए, तो हमें भी ये सौभाग्य मिल रहा है सुनने कहने का। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हृदय में राधा, हृदय में जो कृष्ण प्रेम का समुद्र है, वो जब पूर्णिमा के चांद में समुद्र में बाढ़ आती है, ऐसे ही जगन्नाथ जी के कमल पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नाबाद, उस मुख कमल को देखकर राधा रानी के प्रेम समुद्र में जो बाढ़ आती थी वो शब्दों के रूप में निकल जाती थी। यही ये शब्द है, साक्षात प्रेम ने ही राधा रानी के जो हृदय में कृष्ण प्रेम अनुराग है, उसने ही शब्द का रूप ले लिया। ये शिक्षाष्टकम, ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, राधा रानी के मनोभाव की बात हो रही है। तो इसीलिए आचार्यों के अनुग्रह कृपा पर ही हम समझ सकते हैं इन बातों को। तो आइए, नाम नामकारी जो प्रथम शब्द लाइन का प्रथम शब्द है, नाम नाम मतलब एक नाम, और नाम नाम मतलब बहुवचन, बहुत सारे नाम। अकारी शब्द का अर्थ होता है प्रकट करना या प्रचार करना, आपने अपने बहुत नामों को प्रकट किया, या दूसरा अर्थ आपने अपने बहुत नामों का प्रचार किया। नाम नाम कारी का क्या अर्थ हुआ, बहुत नामों को प्रकट किया या बहुत नामों का प्रचार किया। ओके, नाम नाम कारी। फिर अब बहुत नामों को क्यों प्रकट किया कृष्ण प्रभु आपने, क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे भी विष्णु सहस्त्र नाम में आपके हजार नाम तो फिक्स है, लेकिन ये हजार ही नहीं है, लाखों करोड़ों है, उसमें से हजार विष्णु पितामह की कृपा से महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा भी बहुत नाम है, अनगिनत नाम है भगवान के, क्या जरूरत है प्रकट करने। और नाम शब्द का भी क्या अर्थ होता है? नाम मतलब संज्ञा, जिससे व्यक्ति की पहचान है। पहचान पूछते क्या नाम है आपका, इंट्रोडक्शन पहले तो यही होता है, लिखा पढ़ी होता है, नाम से ही चालू होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव को यह समझना चाहिए कि नाम जो है वो दो प्रकार के हैं। पहले तो बहुत नाम है, ओके, कृष्ण गोविंद लाखों करोड़ों, लेकिन इन सारे हजारों करोड़ों लाखों नाम है, इसमें दो प्रकार के नाम है, एक गौण नाम, दूसरा मुख्य नाम। गौण नाम मतलब वो भी नाम है, गौण मतलब मुख्य नहीं है क्या? वो भी मुख्य है, लेकिन किस तरह का गौण? जिसमें व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य की पहचान होती है लेकिन स्वरूप की नहीं। जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, ये उसमें भगवान जगत के ईश्वर है, शक्ति प्रकट होती है, लेकिन कौन है भाई? कौन है ब्रह्म, कौन है जगदीश्वर, कौन है परमेश्वर? इसका एड्रेस वहां, आप समझ रहे हैं? गौण नाम में हम ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवान को ही। भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, ये सब भी भगवान के ही नाम है ना, लेकिन उसमें उसकी शक्ति सामर्थ्य का अनुभव एड्रेस मिलता है, लेकिन इज अ पर्सन, वो कौन है? उसका क्लियरिफिकेशन नहीं होता ना। गौण नाम है भगवान के ही नाम, आया है ना शास्त्र में, ईश्वर, ईश्वरम सर्वभूतानाम, परब्रह्म अर्जुन कहते हैं गीता में कृष्ण को, परम धाम, ये भगवान के नाम आए। अतः लोके वेदेश प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम, मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, लोक में भी मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, वेद में भी पुरुषोत्तम कहते हैं, मेरे धाम को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मैं हूँ जगत का नाथ, इसलिए मुझे जगन्नाथ कहते हैं, लेकिन वही जगह, समझ में आ रही बात? अच्छा, मुख्य नाम, मुख्य नाम में व्यक्ति का स्वरूप पता चलता है कि किसके आकार का है, किसका पुत्र है, किस लोक में रहता है ना, जैसे उसमें वो पता नहीं चलता। लेकिन मुख्य नाम भी दो प्रकार के हैं, जैसे विष्णु, कृष्ण, गोविंद, इसमें विष्णु के चतुर्भुज है, कृष्ण के दो रूप, दो भुज है, वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, एड्रेस, रंग, रूप, कलर, साइज सब पता चलता है। लेकिन गौण और मुख्य को आप समझ लिए। अब मुख्य में भी दो प्रकार है, एक ऐश्वर्य परक नाम, एक माधुर्य परक नाम। जैसे वासुदेव, ये भगवान का इसमें ऐश्वर्य है, क्योंकि वो चतुर्भुज मूर्ति विष्णु जो वसुदेव संकर्षण, उसमें द्वारिका का सामर्थ्य निभाते हैं, और जब द्वारिका में लीला करते वही कृष्ण, तो क्या कहे जाते हैं? वासुदेव कृष्ण। जब मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया, भागवत में 51 अध्याय 10 स्कंद में कथा है, मुचकुंद की दृष्टि खुलते ही कालियवन जल के भस्म हो गया, फिर काले दिखाई दिए, कालियवन चला गया तो किसका दर्शन हुआ? कालिया का दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी को उड़िया में कालिया ही कहते हैं। उसको देखते ही मुचकुंद ने पूछा, मुचकुंद सूर्यवंश के राजा है, मांधाता के पुत्र है, इश्वाकु के सूर्य के पुत्र, मनु तद इश्वाकु, गीता में है ना चौथे अध्याय में, मनवे इश्वाकवे ब्रवीद, ये गीता के सब पहले शिष्य लोग है बड़े बड़े, हम लोग तो बाद में आए। उसमें इश्वाकु के वंश में आए राजा मांधाता, बड़े विश्व चक्रवर्ती राजा थे, और उसके पुत्र थे ये मुचकुंद, जो सो गए थे, सो रहे थे। को अस्मि, कौन हो आप? तब कृष्ण ने वहां पर कहा है भागवत जी में अपने श्रीमुख से कि मेरे लाखों करोड़ों नाम है महाराज, क्या बताऊं, लेकिन मैं वसुदेव का पुत्र हूं, इसलिए दुनिया वाले मुझे वासुदेव के नाम से जानते। भगवान ने अपना पिता के नाम का एड्रेस दिया उधर कि वसुदेव का पुत्र, ऐसे तो मेरे कितने नाम है क्या बताओ, उसने नाम पूछा कौन हो भैया, तो भगवान ने अपने आप को वहां वासुदेव कहा, क्योंकि ऐश्वर्य है। द्वारिका में कृष्ण है, लेकिन बड़ा सुंदर पीताम्बर, नीली धोती, बाजूबंद, नेकलेस पहनते हैं, मणि लगा रहता है इधर इधर इधर, बड़ा रत्न जड़ित मुकुट। इसलिए तो हमारी राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में कहा हटाओ इसको, क्या पहन के आ गए, राजा महाराजा धीराज बन गए, भूल गए तो हम लोग। बड़े लोगों के पास जाने भी सरल, अपना होता है, नजदीक होता है तो ईजी होता है ना, सरल होता है। इसलिए कुरुक्षेत्र मिलितम रेवा, रूप गोस्वामी ने जो पहचान लिया जो श्लोक महाप्रभु की, प्रभु जी के भाव को, तो कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी का मिलन हुआ कृष्ण से, क्योंकि यहाँ से कृष्ण गए थे द्वारिका से और वहां से वृंदावन से ये लोग आए थे, और उस रूप में जब कृष्ण को देखा तो गोपियों ने, राधा रानी ने विशेष करके कहा ये रूप उतार दो, वो पगड़ी वो भी टेढ़ी, उसमें मोरपीच, जो सहजता है, जो सौंदर्य, जो निखरता है, वो इसमें मजा। और फिर खींच के ले गई जगन्नाथ रथ यात्रा की, चलो वृंदावन, सब कुछ है लेकिन यमुना नहीं है, बंसी नहीं है, आपका मोर मुकुट नहीं है, आपका रास नहीं है, सब ये सब है, मतलब ऐश्वर्य है। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य है, विष्णु में, वासुदेव द्वारिका में ऐश्वर्य है, लेकिन ये सब भगवान के क्या नाम हो गए, ऐश्वर्य पर। लेकिन जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया जिसको हम गाते जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचा, ये माधुर्य है, इसमें कोई ऐश्वर्य नहीं। गोपियों के साथ, गायों के साथ एक सामान्य की तरह भगवान खेलते हैं। इतने बड़े कोटि ब्रह्मांड के अधिपति है लेकिन ब्रज में घेरे गाय, लेकिन गाय के पीछे चलते हैं। गोपियां भी कहते तृण चरानुगम श्री निकेतनम, अरे श्री लक्ष्मी जी आपके चरण को आश्रय बनाई है, घर बनाई है, और आपके चरण को पता नहीं क्या रोग हो गया है कि वो तृण चरने, तृण चर मतलब गाय पे जो तृण को चरे, घास को चरे, अनुगम उसके पीछे चलते हो। कोई व्यक्ति पशु के पीछे चलता है क्या? हमारे पीछे चलिए, क्या आप है कि गाय के पीछे दिन भर धूप में घूमते फिरते रहते हो? ये भी भाव है तृण चरानुगम, लेकिन भगवान घूमते, माधुर्य है। वनचारी यमुना तीरा पर यही लीला करते है गोपी जन वल्लभ, गोपियों के अपने प्राणनाथ। तो ये क्या नाम हो गया सब, जिसमें माधुर्य, माधुर्य है मतलब रस है, रस है मतलब या तो साख्य है या तो वात्सल्य है। ऐसे माधुर्य का अर्थ एक श्रृंगार, माधुर्य अपने आप में भी रस है लेकिन साक्ष्य में भी माधुर्य होता है, वात्सल्य में भी माधुर्य होता है। माधुर्य तो ब्रज में सर्वत्र है, माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे गैला प्रचार क्या सुख व्यासेर नंदन, ये सब चैतन्य चरितामृत में आया है कि ये जो माधुर्य रस है, रस के द्वारा जो संबंध है और उसमें जो आनंद है वो केवल ब्रज में, वृंदावनेश्वर से कृष्ण उसमें। तो नाम नाम में हम इतना समझ रहे हैं कि गौण नाम, मुख्य नाम, मुख्य नाम दो, ऐश्वर्य माधुर्य नाम, और ये भी ऐश्वर्य नाम भी करोड़ों है, माधुर्य नाम भी करोड़ों है, और गौण नाम भी अनादि अनंत अशेष, ये सब क्या है अभेद, ये सब भी भगवान की बात हो रही ना, अनंत गुण है इसलिए अनंत अनादि है, कर्म कारण कारण है, ये सब भी अनंत नाम है, वेदों में बहुत आया है इनकी चर्चा। अब कीर्तन की बात हम करें, नाम जप या कीर्तन जो हमारे कलयुग का धर्म है, संकीर्तन यज्ञ प्राय यजन्ति सुमेधश भागवत कहता है, और भगवत गीता क्या कहती है 10:25 यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, ये जप करना है, और साथ में मिलकर मृदंग कर काल के साथ उच्च स्वर से गाना, इसको कहते हैं संकीर्तन साथ में। अब इसमें भी देखो, भजन में भी आप लोगों ने सुना होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेदों में इसके लिए सब चपड़ापट्टी है, सब लफड़ा है, लेकिन हम वैष्णवों के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई मतलब नहीं, मोक्ष तो हम चाहते नहीं, भोग हम चाहते हैं, धर्म की बात जहां है वहां भी तथाकथित दैहिक शारीरिक मानसिक वर्णाश्रम धर्म गौण है। सबे पुंसो पर धर्म, आत्मा की हम बात करें, हम आत्मा है तो भगवान की भक्ति परम धर्म है, उसके अनुसार हम बात करें तो वो धर्म में तो हमारा रुचि नहीं, उससे ऊपर उठना है दैहिक धर्म से शारीरिक धर्म, क्योंकि हम शरीर है नहीं, शरीर नष्ट हो तो वो धर्म भी नष्ट हो जाए, मतलब वो धर्म सनातन नहीं है। आत्मा सनातन है, उसका जो धर्म है भगवान के साथ वो नित्य है, उस धर्म में हमें स्थित होना, उस अनुसार हम लोगों के लिए क्या है, श्री रामस्य नाम रूप लीला धाम। वो लोग किस में बरते हैं, धर्म अर्थ काम, और हमको इन चारों में चौकड़ी, हमें क्या चाहिए, भगवान का नाम रूप लीला और एतत् चतुष्टयम्, ये चारों भगवान ही है। भगवान भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं, भगवान भगवान के रूप में अंतर, उनके धाम में भी, क्योंकि वो भी उनकी स्वरूप भूता आनंदनी शक्ति संदनी शक्ति का ही तो विलास है, धाम है ना, धाम भी तो जड़ नहीं है। अब ये तो मैं थोड़ा बताने के लिए बताया, मैं सरल करता हूँ इसको थोड़ा, कि हम कीर्तन गाते हैं, कुछ कीर्तन नाम कीर्तन होते हैं, जैसे ये राधा माधव नाम कीर्तन, माधुर्य है लेकिन कौन सा नाम है, जैसे हम गाते तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तो वो भगवान का ऐश्वर्य है, उसमें माधुर्य के उसमें दिखाया कि अरे तुम तो सबके सबके बाप हो भाई, ब्रह्मा तुम्हारी आज्ञा से चलता है, शिव तुम्हारी आज्ञा से सेवा करता है, तो उसमें भगवान की सृष्टि लीला की बात है। जैसे हम गाते हैं लूट लूट दधी माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो ऐसे लीला धाम को बारंबार, ये लीला करते माखन खाते गेनु चराते, ये क्या हो गया लीला कीर्तन, लीला है ना इसमें सब, नाम कीर्तन, खाली महामंत्र गाओ राधा माधव, ये नाम कीर्तन है और वो क्या है लीला कीर्तन। जैसे हम गाते हैं वृंदावन के धाम की महिमा के विषय में, ताहे शोभे कनक, वृंदावन कैसा है, दिव्य है, मनोरम है, यमुना बह रही है, नीले कमल खिल रहे, आज जाओ तो नहीं मिलेगा लेकिन क्योंकि हमको दिखता नहीं, वहां तो है लेकिन प्राकृत दृष्टि से नहीं हो रहा है, इसलिए शास्त्र और भाव नेत्रों से प्रेम नेत्रों से दिखता, तो ये क्या हो गया धाम कीर्तन, और भगवान का रूप कीर्तन भी तो है, भगवान कैसी बंसी बजाते हैं, कैसे, जैसे हम गोविंदम आदि पुरुषम में स्तोत्र है वेणु क्वणंत अरविंद दला, इसमें क्या है भगवान की वेणु के विषय में, आंखों के विषय में, उनके रूप कंदर्प कोटिकमणि है ना, ये श्लोक ये स्तोत्र आदि सब, तो ये भी चार प्रकार के हो गए ना, नाम रूप लीला धाम। हम लोगों का यही जीवन है। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत के मंगलाचरण में इसी बात को बताते हैं, और अंतिम लाइन में वो कहते हैं जीवन अमृतम परम भूषणम में, ये जो कृष्ण का मंगलमय नाम है यही मेरा जीवन और प्राण, उनकी लीला उनका नाम उनका कीर्तन यही मेरा सर्वसार है। अब हम इतना समझे नाम नामकारी के ऊपर कि ये चार प्रकार के कीर्तन होते हैं, गौण मुख्य नाम। अब इसको थोड़ा आगे बढ़े, भगवान ने ये सब प्रकट किया या फिर प्रचार किया क्यों, ये बात प्रश्न बाद, ये तो आप किया इस रूप में किया, और उसमें भी एक शक्ति, इसको क्यों किया उसका उत्तर बाद में, कैसे किया इसका पहले, दिस टाइप ऑफ, इस तरह किया, क्यों किया, वाई, वो तो वो बात की बात है। इतने सारे नाम, इतने सारे रूप, इतनी सारी लीला, बहुधा अनेक प्रकार की अकारी आपने प्रचार किया प्रकट किया कैसे, वो तो अपनी स्वरूप भूता अतरंगा शक्ति से आप सोचते ही हो जाता है, लेकिन विशेषता क्या है, निज सर्व शक्ति, आपने अपने नाम में सभी शक्तियां डाल दी, आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं, अगर आप अनादि है तो आपका नाम भी अनादि, आप शक्तिमान है तो आपका नाम भी शक्तिमान, तो आपका नाम शक्तिमान है ही है, आपका नाम आपसे अलग है ही नहीं, आप और नाम दोनों एक ही है, तो आप में तो शक्ति बाद में नहीं भरी गई, पहले से है, तो नाम में भी शक्ति पहले से होनी, कि फिर नहीं कि नाम बेचारा खाली था, कुछ नहीं था, भिखारी था, फिर भगवान ने कृपा करके नाम में शक्ति डाल दिया, फिर शक्तिमान हो गया हम लोग के उद्धार के लिए, बराबर ना। अगर नाम और कृष्ण एक है, नाम सर्वशक्तिमान है, कृष्ण सर्व, तो इसमें भी होनी चाहिए ना, क्योंकि एक ही है, जब से है तब से है, अनादि है। क्योंकि वो श्लोक हम कोटेशन देंगे, अभिन्नत्वात् कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण चैतन्य साक्षात नाम है, कोई अंतर नहीं है, तो उस अनुसार तो नहीं होगा ना। तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया कि आपने सभी शक्ति नाम में भर दी, हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हम कलयुग के बद्ध जीव जब तक देखते सुनते नहीं तब तक मानते, हमको लगना चाहिए कि हमारी हमारे सामने डालो, तो बोलो मैंने डाला, ऐसे ही है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है ना, इसलिए तुमको नहीं समझ में आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए एक उदाहरण दो आपको, गांव में भी आप लोगों को भी सुना होगा, कोई बड़े डॉक्टर होते हैं ना, अनुभवी जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकली भी बहुत अनुभवी और डिग्री भी, वो व्यक्ति को देखते ही थोड़ा सा छूते ही समझ जाते क्या रोग है, उस अनुसार दवा भी उसके माइंड में होती है। लेकिन हम लोगों को क्या आदत है, दवा खाने जाने पर वो जब तक हमको सुलाए नहीं, फिर बोले ऐ करा, फिर बिंदी न डाले, फिर वो कान से 10 बार ऐसे न लगाए, फिर पूछे नहीं, तब तक हमको लगता नहीं कि हमारा चेकअप हुआ। अगर ऐसे ही बोले ये हो गया चलो ये दवा लो, तो हम लोग सोचेंगे अच्छा होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको वहम है कि हमारा चेक ही नहीं किया। समझ आती, क्योंकि हम लोग को तभी विश्वास होगा जब वो कुछ टाइम पास करेगा 10 मिनट। जैसे आप ज्योतिष के पास जाओ, बड़े अच्छे ज्योतिष हो तो देखते ही पढ़ लेते, लेकिन नाटकबाज लोग हाथ दिखाओ, पत्ता निकालो, ये करो वो करो, फिर आपकी राशि पूछेंगे, ये पूछेंगे, फिर सब पूछने के बाद अपने पोथी में ऐसे फालतू पत्ता घुमाएंगे, फिर आपको बताएंगे, आपको लगता है हाँ देख के बताया। हमारा ऐसा स्वभाव है ना बुद्धि, अगर ऐसे ही बता दे, ऐसे ही बता दिया कुछ जानता नहीं, वो टाइम पास जब तक ना करे, जबकि वो फालतू होता है, अच्छे भी होते हैं उसमें, हम ये नहीं कह रहे। अब पोपट लेके बैठते बताओ, पैरट वो तोता निकालेगा उधर से, तुम्हारा पत्ता तोता निकालेगा। संत लोग उदाहरण देते कि एक व्यक्ति तोता पत्ता लेके कई एक दिन सुबह से बैठा था, शाम हो गई कोई ग्राहक नहीं आया, तो इस ज्योतिष ने उस तोते से कहा तू मेरा ही पत्ता निकाल। कोई दूसरा तो पत्ता निकालने आया नहीं, तो उसने निकाल के देखा तो बोला ये गांव को उल्लू बनाने का धंधा बंद कर, धंधे पे लग जा, उसने ऐसा लिखा था बेटा। दुनिया को उल्लू बना रहा है तो खुद काम पे लग जाए, मिल जाएगा 10-15 हजार महीने, पत्ते में भी ऐसे निकलता है, उसमें भी सही निकल जाता है कभी कभी, तो जो उल्लू बनाते हो तो यही करते। तो उसी प्रकार जब भगवान बोल दे तो उसका बोलना कहना एक है, लेकिन हमारा एक हमें क्रिया करनी पड़ती है, उनका संकल्प भी क्रिया है, लेकिन वो चिन्मयता हमें समझ में आती नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सारी शक्ति उसमें डाली होगी, फिर भी हम लोग डाली है नहीं, डाली होगी होगी। अब बताओ क्या करें ऐसे ऐसे अश्रद्धालुओं का, हम जैसों की स्थिति ये है। इसलिए भगवान कह रहे कि डाली हमने से, जबकि स्कंद पुराण में भक्तिनाथ ठाकुर ने कई श्लोक कोटेशन दिए कि जितने तप यज्ञ दान हवन पूजा व्रत जो भी है कर्मकांड वेदों के सब तप दान व्रत सब, उससे जो भी फल मिलता है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति का अर्थ ये है कि वेदों में जितने प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, जितने प्रकार के व्रत का तप का वर्णन है, और उस व्रत दान यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वो सारा फल भी हरि नाम लेने वाले को मिल जाए, ये अर्थ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि तुम हरि नाम जप कर रहे हो। हरिदास ठाकुर क्या करते थे, केवल हरि नाम, हरि नाम आचार्य है, क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञ तप दान। महाप्रभु ने स्वयं कहा कि हरिदास तुम महामंत्र ले रहे हो तो एवरी सेकेंड क्षणे क्षणे जितने तीर्थ तुमने कर लिए, जितने दान देने की बात है, सुवर्ण की, गाय की, धन की, अन्न की, सब तुमने दे दिया। निरंतर कर तुम्हें चारी वेदाध्यन, जितने वेद है तुमने पढ़ लिए, क्योंकि सारे वेदों का सार तो महामंत्र, नाम लिया उसने जान लिया सारे वेदों का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ पढ़ चारो, हरि नाम नहीं ले रहा है तो वेद पढ़ के भी नरक में जाएगा, लेकिन जो नाम ले रहा है भले वेद नहीं पढ़ रहा है फिर भी वो नरक में नहीं, क्योंकि नाम का फल सारे वेदों का सार तो यही है, हरे नाम हरे नाम। लेकिन ये हरिदास ठाकुर कहते महाप्रभु ने कहा देव मुनि है तुम्हें परम पावन, जितने देवता है मुनि है उन सब से तुम पवित्र हो, जबकि जन्म तो मुसलमान परिवार में हो साधारण मनुष्य के रूप, लेकिन तुमको जो छुएगा उसकी बात छोड़ो, तुमको जो नाम ले लेगा ना हरिदास ठाकुर की जय बोल देगा ना वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। नाम लेने वाले में इतनी शक्ति आ जाती है कि उनका कोई नाम ले उसके भी पाप कट जाते। इसलिए आज जिसका आविर्भाव तिथि है किसका है, श्री वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के कीर्तनिया भक्त थे, वो शशि रेखा के गौण दिशु दीपिका के अनुसार वो शशि रेखा नाम की एक सखी है मंजरी, उसके अवतार थे। और कुछ लोग कहते हैं कि अनिरुद्ध जो चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध है कृष्ण पुत्र उसके भी अंश थे। इतनी शक्ति थी कि 24 घंटा 24 प्रहर नॉन स्टॉप कीर्तन कर सकते थे, कितना हम लोग 24 मिनट नहीं कर सकते वो भी रथ यात्रा में, कितना बिस्तरी पुस्तरी कुछ पी के भी जी बुलाएंगे फिर भग जाएंगे, 24 घंटा कंटिन्यूस, और उदंड कीर्तन ढीले ढीले कीर्तन नहीं वक्रेश्वर पंडित करते थे। इसलिए महाप्रभु ने कहा तुम मेरी पाख हो, अगर तुम्हारे जैसा दूसरा पाख होता तो अभी गोलोक चला जाता, एक पाख ऐसी तुम्हारे जैसा और एक भगत मिल जाए ना, जैसे प्रभुपाद कहते थे और मेरे जैसे 10 मेरे गुरु भाई होते ना तो पूरी दुनिया को महामंत्र से नचा देते साथ देने वाला हो ना तो बदिए बोलो, ऐसे ही महाप्रभु ने कहा अगर दूसरा होता ना तो मैं चला पा जाता वो इतने। इसलिए गोविंद घोष की जो कीर्तन टोली थी ना 7 मंडलियां उसमें ये मुख्य कीर्तनिया ये थे, श्रीवास आंगन में भी कीर्तन करते थे। इसके विषय में लिखा है श्री विक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र यार नाम स्मरण न, केवल इसका नाम स्मरण हो जाए तो जगत है धन्य, पूरा त्रिभुवन पाप शून्य धन्य पवित्र हो जाएगा अगर कोई वक्रेश्वर पंडित का नाम का क्या करेगा सुनेगा स्मरण करेगा बोलेगा उसकी बात तो बाद की बात। क्यों? क्योंकि वो कीर्तन करते थे नाचते थे गाते थे, विश्वास श्रद्धा कहने की जरूरत नहीं मानने की जरूरत नहीं। अब इसका अब ये तो मैंने अपनी और ये हिंदी बताया, प्रभुपाद ने जो अर्थ किया लाइन उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया भक्ति विनोद ठाकुर के भाव अनुसार। अब स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया ना कि इस ये संस्कृत की व्याख्या स्वयं महाप्रभु बंगला में करते हैं, ये तो जो हिंदी प्रभुपाद ने किया और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भाव बताया एक लाइन का नाम नाम कारी बहुधा इसका, अब स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं, सुनना चाहोगे आप लोग? ओके प्रसाद अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपा ते करी लग अनेक नामेर प्रचार। अब जो हमारा प्रश्न था कि क्यों किया भगवान कैसे किया, ये तो अपनी स्वरूप शक्ति से क्योंकि अंतर करने की जरूरत ही नहीं शक्ति भरना ये से, लेकिन अब जो हमारा प्रश्न था कि क्यों किया अनेक नाम क्यों किया, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार के जीव है ना, और उस जीवों में एक जीव के पास अनेक प्रकार की इच्छा है, अनेक लोकेर जीव अनेक प्रकार, अनेक मतलब सो में नहीं बहुत सारे, और कृपा ते इसलिए कृष्ण कृपालु है, जिस जीव की जैसी इच्छा है जैसा उसका स्वभाव है उसी इच्छा और उस स्वभाव के अनुसार उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने ऐसा नाम दिया। जिसकी जिस नाम में प्रीति हो रुचि हो उसका वो जप करे कीर्तन करे उनकी इच्छा पूरी हो और उसका उद्धार हो, ये कृष्ण की करुणा सिंधु दया स्वभाव के कारण जितने जितने प्रकार की इच्छा है जितने प्रकार के जीव वैरायटी में जगत है ये पूरा, तो भगवान ने भी अपने अनेक प्रकार के नामों का प्रकटन या प्रचार किया। ये भगवान ने की महाप्रभु स्वयं इसका आस्वादन कर रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा हम अंदर जाए, ये तो है बहुत सारे जीव, देखो भेद है हमारा मध्व, हम थोड़ी सिद्धांतिक बात करेंगे तो आप सो जाओगे, लेकिन समझना जरूरी है। हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय है ना, मध्वाचार्य वायु अंश हुए ना। अभी कुछ दिन पहले मध्वाचार्य का तिरुभव तिथि था, होगा क्या फर्क पड़ता है हम लोग, ये तो आचार्य लोग आते जाते रहते, हम लोग इतना बिजी है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमारे आचार्य जो गौड़ी है, जिसके संप्रदाय में हम है मध्वाचार्य के, हमें मध्वानुग कहा जाता है, महाप्रभु ने इसको क्यों स्वीकार किया, क्या उसका मत था। हुँ? हुँ? पूरे अद्वैतवाद जो शंकर मत का खंडन करके द्वैताद्वैत की जिसने स्थापना की, तो उसने पांच भेद बताए जीव में भी, जड़ जड़ भेद, प्रकृति और प्रकृति में भेद है। जैसे प्रकृति है लोहा, ये प्रकृति है लकड़ा, भेद दोनों प्रकृति है ना जड़, लेकिन भेद है ना, इसके भाव में, इसके भाव में भेद है, इसके प्रभाव में, इसको जलने में, इसको जलने में टाइम है, जड़ जड़ ये दोनों लेकिन भेद है। तो जड़ जड़ में भेद है, तो जड़ चेतन में भी तो भेद है। वो लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मेव, जैसे खंडन किया जाता है कि सब कुछ ब्रह्म है, कोई भेद निर्विशेष, कोई विशेषता। लेकिन मध्व कहते हैं कि प्रकृति प्रकृति में भेद है, जबकि जड़ जड़ में भेद है। सोने का 30,000, लोहे का 50 रुपए किलो मिलता है, जड़ ही दोनों, लेकिन वैल्यू में भेद है कि नहीं। लोहे के गहना तो कोई नहीं पहनता, वैल्यू में भेद है, उसके प्रभाव में भेद है, उसके रंग रूप में भेद है, भेद क्यों नहीं है बताओ, है ना भेद। अब जड़ जड़ में भेद है, तो जड़ और चेतन मतलब आत्मा जो सजीव प्राणी, जड़ चेतन में तो भेद है ही है, जड़ जड़ में भेद है, जड़ चेतन में भी भेद है। तो जैसे जड़ जड़ में भेद है, उसी तरह जीव जीव में भी भेद है। बद्ध जीव, नित्य जीव, गोलोक वृंदावन के जीव में और कल यहाँ के जीव में भेद है कि नहीं। वो नित्य मुक्त आनंद लीला कर रहे, हम लोग यहाँ मर रहे, ट्रेन के धक्के खा रहे, गर्मी खा रहे, फर्क है कि नहीं। जीव स्वरूप में फर्क नहीं, कार्य में फर्क है कि नहीं, स्थिति में फर्क है। और फिर जीव ईश्वर में भी तो भेद है, वो परमेश्वर माया के स्वामी है और हम जीव भी अणु माया के अधीन है। ये सब सिद्धांतिक बात है, लेकिन हम लोग, वो लोग जब कहते सब एक है, अरे भाई प्रभुपाद ट्रेन में थे तो गर्मी की सीजन अलाहाबाद जा रहे थे, तो एक मायावादी साधु था और कह रहा था सब एक है, तो कंबल कंबल ओढ़ा था, प्रभुपाद ने कहा कंबल दे दो हमारा, फिर वो ठंडी से मरने लगा। बोले महाराज कृपा करो, तो प्रभुपाद ने कंबल में से एक धागा निकाला, बोले ओढ़ लो हे महाराज। अरे भाई धागा और कंबल एक ही है ना, बोले एक है लेकिन धागा से ठंडी जाता कंबल। तो तेरे बाप यही समझा रहा हूं तेरे को कि जीव भगवान वो प्रकृति के स्वामी प्रभुपाद कहे कि यही तो, अगर धागा और कंबल एक है, धागे से ही कंबल बना है, लेकिन भेद है कि नहीं। कंबल से जो काम होता है वो धागे से होता है, ऐसे ही गुणों से जीव सच्चिदानंद है, परमात्मा का अंश है, तो वो लेकिन वो एक है, ये अनंत है, वो विभू है, ये दैट इज द फिलोसॉफिकल टॉपिक, ये दर्शन है। और फिर हमारा क्या उससे संबंध है, अगर हम चेतन है तो जड़ पदार्थ से आसक्ति क्यों रखते हैं, जबकि हमें चेतन की चेतन से होनी चाहिए, और चेतन आत्मा है हम, तो बिना चेतन के आसक्ति प्रेम किए बिना हम जड़ में कभी खुशी होंगे, क्योंकि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम, गीता में भगवान कहते हैं सोवे भूमा, उपनिषद कहता है कि जो महान है बृहद है तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कभी सुख होता, अनंत में ही सुख होता है, तद ब्रह्म्य सौख्यम अनंतम तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम, ऋषभ देव ने कहा 5-5-1 भागवत। ये सब बातें है, मतलब भेद है तो अनेक, ये तो मैं थोड़ी टॉपिकल फिलोसॉफिकल बात बताया, लेकिन हम इस संसार में भी देखो, स्त्री और शरीर में जो है उसकी इच्छाएं अलग है, पुरुष शरीर में उसकी इच्छा अलग है। अब वही स्त्री या वही पुरुष जब बच्चा था तब उसकी इच्छा अलग थी, युवान हो गया तो इच्छा बदल गई, अब खिलौना नहीं चाहिए, अब कंप्यूटर चाहिए, इच्छा बदल गई, वही था। तो स्थान रजस तमस गुणों के प्रभाव में काम क्रोध लोभ अनुसार हमारी इच्छाओं में विकार अनंता आती है, और ऐसा व्यक्ति कभी उद्धार, वो तो इसी संसार के चक्र में रहेगा। इसलिए कृष्ण ने करुणा करके अनंत प्रकार के जीव, अनंत प्रकार की भोगों की इच्छा में लगे हैं, लेकिन उन भोगों की इच्छा पूरी होते होते उनको शुद्ध करके मेरे धाम में मुझे लाना है, इसलिए मैं स्वयं नीचे गया जो काम नहीं कर पाया। कृष्ण स्वयं आए थे द्वापर में, फिर भी हम लोग तो रह गए ना। राम जी स्वयं आए थे अयोध्या में, त्रेता में, लेकिन हम तो रह गए ना। तो हम लोग जो रह गए हैं उसका उद्धार करने के लिए कृष्ण नाम नाम अकारी क्यों आए, यानी वही भगवान, वही कृष्ण, वही राम नाम के रूप में हम लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। और आप कहो कि चलो भाई भगवान का नाम प्रकट हुआ हमारे उद्धार के लिए, भगवान प्रकट नहीं हुए रो। अगर भगवान प्रकट होते तो हमारा उद्धार होता नहीं, क्योंकि हम लोग को नाम जितना दयालु शक्तिमान कृपालु है उतना भगवान भी। आप कहोगे कैसे भाई, अरे भगवान प्रकट होते तो उन्होंने कहा विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय, हम साधु होते तो परित्राण करते, हमारा तो नंबर उसमें लगता, विनाशाय वाले बात में हो जाते ना। क्योंकि भगवान प्रेम से समझाते, निवेदन करते, 100 गाली तक माफ करते, फिर सुदर्शन निकालते, तो हमारा नंबर तो 80% लोगों का तो उसमें ही हो जाता। तो उद्धार कहाँ हुआ, वध हो गया उल्टा, अब क्या करें। इसीलिए उसके जो पाप है, उसके जो अपराध है, उसको शमन करने की शक्ति स्वयं भगवान से ज्यादा उनके नाम में। इसलिए रामायण में लिखा नाम, राम ने कितनों को तारा बताओ, रामायण आप पूरी पढ़ो तो चालू करेंगे कहाँ से, अहल्या से, लेडीज फर्स्ट, मारने में भी लेडीज पर ताड़का, लेकिन उद्धार में भी अहल्या, उद्धार भी राम जी ने चालू किया तो अहल्या का पत्थर से उद्धार कर दिया ना, सांप मुक्त कर दिया, जो भी कर दिया हा? फिर वो कौवा आया इंद्रपुत्र चित्रकूट में और फिर सुग्रीव आया, वो तो ऐसे नहीं आया, भाई ने निकाल दिया तो बेचारा मारा मारा फिर, तो हनुमान जी ने कृपा किया तो उसका भी मेल, और वो लास्ट में विभीषण आया। चलो 4-5 हमने बता दिए, 4-5 हम भूल गए होंगे, आप पढ़ लेना, लेकिन 15 से ज्यादा नाम मिलेंगे। अरे नहीं प्रभु जी, 15 से ज्यादा क्या, हमने रामायण पढ़ी है, तो हम लोग सत्संग में आते हैं प्रसाद के लिए, लेकिन कभी कभी जागते हैं, इसलिए हमने भी सुना है। क्या सुना है भैया? अरे भाई भगवान जब अयोध्या से विमान ले गए तो सारे अयोध्या वासियों को पुष्प विमान में उधार किया कि ले गए धाम में, ऐसा रामायण में संतों से हमने। ओके चलो भाई अयोध्या वासियों में मनुष्य का, लेकिन यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव, बंबई वाले तो रह गए, अलाहाबाद वाले तो रह गए बेचारे, गुजरात वालों का तो पत्ता ही कट गया, पंजाब तो ऐसे ही लस्सी पीने में गेहूं खाने में रह गया, ये सब तो रह गए, अयोध्या वाले का मेल हो गया उनका। भगवान आए तो भी 10-25-50 का या केवल अयोध्या वासियों का, उनका तो ऐसे ही उद्धार हो गया था, धाम में जन्म लिया धाम में, वो तो है ही है दिव्य। हम लोग का तो नंबर राम के नाम ने ही लगा, जो काम भगवान स्वयं ने किया अवतार लेकर जीवों के ऊपर करुणा उद्धार, वो कृष्ण या राम के नाम ने जो किया वो उसके स्वरूप परमात्मा ने भी, वो परमात्मा हमारे हृदय में ही है ना, हृदय से अर्जुन, फिर भी हम लोग दुखी हो रहे हैं, फिर भी हम लोग नरक जा रहे हैं, फिर भी हम पाप कर रहे, तो वो कर क्या रहे, हम लोग कहते ना दिल्ली में ये लोग कर क्या रहे। तो चलो भाई भक्ति में भी हम पूछ सकते हैं, भगवान हमारे हृदय में है, हम इतना मर रहे हैं नरक जा रहे, वो कर क्या रहे, तुमको देख रहे बेटा तुम क्या कर रहे हो, कि गीता में बोले मैं इसलिए बैठा हूं यहां कि गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं साक्षी हूं तू क्या कर रहा है, और जो करेगा ऐसा फल दूंगा, तो हम करेंगे तो अच्छा नहीं, इसलिए फल भी अच्छा। लेकिन वही कृष्ण जो परमात्मा रूप में है हृदय में, फिर भी जीव दुखी और नरक में जाता है, लेकिन उसी कृष्ण का नाम जिस जीव की जीवा पर आ जाए उसके जन्म मृत्यु के चक्कर कट जाते हैं। अब बताओ परमात्मा दयालु के नाम, सीधी बात है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से भी बड़ा कोई है तो वो हरि का नाम है, क्योंकि नाम जितना कृपा करता है, जितनी दया करता है, जितना उद्धार करुणा करता है, उतना स्वयं परमात्मा या स्वरूप आके भी नहीं कर पाए। ये तो सत्य है, एक अहल्या को तारा, लेकिन राम नाम से कितनी अहल्या तर गई बताओ, आप गिनती नहीं कर सकते। इतने इतने जीवों का उद्धार कर दिया हरि नाम कृपा करके। अब एक बात मैं बताऊं इस पर आप लोगों को कि भगवान का नाम और भगवान एक है, करुणा भी ज्यादा है नाम में, उसी प्रकार भगवान से ज्यादा नाम में बल भी ज्यादा है। भगवान में जितना बल है, यहां तो बोल रहे कि जितनी शक्ति उतनी डाली, लेकिन प्रमाण के साथ आचार्यों ने बताया कि उतनी नहीं, उनसे ज्यादा डाली। आप कह रहे निज सर्वशक्ति। अब देखिए ये ब्रह्मांड है ना पूरा जड़ जगत, चौथ ब्रह्मांड भगवान की सर्वशक्ति है नहीं, एक अंश शक्ति, ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड तो एक एक चौथा है, मतलब एक पांच विभूति है। गोलोक वृंदावन वैकुंठ इनसे कितना है, तीन गुना। परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, गीता में पढ़िए आप लोग, ब्रह्म संहिता पढ़िए, क्लियर है सब। तो ये जो भौतिक जगत ब्रह्मांड है, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तो भगवान की एक तुच्छ फल्गु शक्ति है, और नाम में फल्गु शक्ति थोड़ी डाली, क्या डाली, सर्वशक्ति डाली। अब विचार करिए इस पर, लॉजिक है थोड़ा, कि अगर थोड़ी सी शक्ति से इतने ब्रह्मांड की रचना हो जाती है और इतना ब्रह्मांड चल रहा है, प्रलय हो जाता है, और नाम में थोड़ी नहीं डाली, कितनी डाली, सभी। अब ब्रह्मांड को भी हिलाने वाली शक्ति नाम में आ जाएगी, प्रमाण क्या, ये तो बात हो गई कि भाई सब शक्ति है तो जितनी भगवान में सब शक्ति होनी चाहिए, तो भगवान में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड रचने की शक्ति है, भगवान में तो अनंत कोटि वैकुंठ रचने की शक्ति है, तो वो भी शक्ति उसके नाम में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नाम लेता है उसमें भी वो शक्ति, प्रभु जी हम तो 5 साल से इसको में ले रहे, शक्ति घट रही है हमारी, तो प्रसाद के कारण टिके हुए अभी प्रैक्टिकल कैसे समझे इसको अगर नाम में सब शक्ति है तो नाम लेने वाले में भी तो शक्ति आएगी, आनी चाहिए, और आई है, प्रमाण भी तो है। जैसे भागवत में प्रहलाद, प्रहलाद के कैरेक्टर में क्या है, आप पढ़िए भागवत में तो 7वें स्कंद का 8वां अध्याय, उसका शायद 6ठा श्लोक होगा। हिरण्यकशिपु के सामने तीसरी बार जब प्रहलाद को खड़ा किया उस चंडमर्क में, तो हिरण्यकशिपु देखा, क्या देखा, प्रहलाद एकदम शांत और अभय निर्भय खड़े थे, कोई डर नहीं, जबकि उनके गुरु कांप रहे थे कि दो बार ऐसा अनुभव हुआ था कि इस बार गड़बड़ गई तो रेशन कार्ड से नाम कटेगा पक्का, प्रहलाद अगर इस बार कुछ गड़बड़ बोला ना, पहले बोल दिया कि वृंदावन जाओ भजन करो, फिर बोल दिया श्रवण कीर्तन, अब तक तो जान बची, अब अगर ये बोल दिया ना तो हिरण्यकशिपु उसको बाद में मारेगा, पहले हम लोग को मारेगा, इसलिए वो डर रहे थे। और सारे हिरण्यकशिपु के सभा में जो बैठे थे मंत्री संतरी फंतरी सब, वो भी डरे डरे बैठे थे, बड़े बड़े शक्ति सामर्थ्य अस्त्र शस्त्र लेकर, बड़े बड़े असुर, लेकिन प्रहलाद 5 वर्ष का, कमल जैसी खिली हुई आंखें, मुख पर मुस्कान, और एकदम अभय खड़ा था, भजो हूं रे मन अभय चरणार, उसके मन में तो अभय चरणार इनका भजन हो रहा था, इसलिए कोई डर नहीं। अब क्या था, हिरण्यकशिपु नोट किया, डर ही नहीं रहा, उसको सर्व आश्चर्य हो रहा था, तब वो श्लोक बोला, कृद्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयालोक सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ़ साशनम किं बलोत्यगा। अरे मूर्ख बालक, मैं जब अपनी आईब्रो, ये जो क्या कहते हैं भ्रुकुटी, थोड़ा टेढ़ा करता हूं ना ऐसे, तो बड़े बड़े इंद्र सूर्य चंद्र बड़े बड़े लोकपाल वहां से मुझे दंडवत मारते, और कुछ लोग तो इधर आ जाते, महाराज मेरे को कुछ बोला क्या, व्हाट कैन आई डू फॉर, मैं आपके लिए क्या करूं, निकल, तेरे को नहीं बुलाया, ठीक है कभी काम पर बुला लेना, संडे को सेवा में आ जाऊंगा, गुंडीचे मंदिर में आऊंगा, कोई भी काम बोल, ऐसे निवेदन करते। और तू है कि डर नहीं रहा हमसे, कृद्यस्य कंपन्ते, मैं जब क्रोध में आता हूं तो कंपन्ते ट्रम्बलिंग कांपने लगते, लोकेश्वरा ये बड़े बड़े ईश्वर, और तू मूढ़ न भीत, मुझसे डर नहीं रहा, किम शासनम बलोत्यगा, किसके बल से बलवान हो रहा है तू, ये बल कहां से आ रहा है तेरे को। प्रहलाद उवाच, आप पढ़िए भागवत, न केवलं भवतश्च राजन् सवे बलिनां बलिंचा परेशां परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वश प्रणीता। प्रहलाद ने बोला, राजन, पिताजी ने कहा, हे राजा जी, आप अपने आप को राजा समझ रहे हो तो राजा ही ठीक है। न केवलम भवतश्च राजन, आप में जो बल है ना, केवलम भवत, आप में, मुझ में या मीरा रोड वालों में, दहिसर वालों में, जिसमें जो भी बल है, बल का स्रोत एक ही जगह है, जो गीता में बोले है बलम बलवता चाहम अर्जुन, सारे बलवानों का बल, सारे बुद्धिमानों की बुद्धि, ये सब कृष्ण बोले है गीता में। तो ये प्रहलाद कह रहे हैं कि पिताजी, आप में, हम में, जिसमें जो भी थोड़ा बड़ा ज्यादा कम जो भी बल है, वो एक ही भगवान विष्णु से आता है। और आप जिसके ऊपर पावर कर रहे हो ना, ब्रह्मा से वरदान लेके आए हो, ब्रह्मा भी इससे बलवान है। ब्रह्मा दयो येन वश, ब्रह्मा जिसके वश में है, सारे से लीडर तो ब्रह्मा है, सारा विश्व उसके वश में, उनसे बल आ रहा है। ये तो उत्तर हो गया, कहां से बल आ रहा है। लेकिन अब मजे की बात है कि हिरण्यकशिपु ने पूछा, भागवत में नहीं है, ये श्लोक में नहीं है, प्रहलाद तो और दूसरा उत्तर देंगे, लेकिन हमने कभी निवेदन किया था यहाँ पर शायद कहीं पर, कि दो श्लोक के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें भी कथा होती है, उपदेश होता है। उसको चहने ढूंढने के लिए वैष्णव संत चाहिए, जो हमारे आचार्यों की टीका होती है, जो लिखा नहीं, दो श्लोक होते गीता, उसके बीच खाली जगह होती है ना, उसमें भी कुछ होता है। हम लोग तो काला भी नहीं पढ़ पाते, तो ये खाली तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा खाली है, इसीलिए हम लोग खोली में रह रहे के खाली हो गए अभी, इसलिए मंदिर में आना चाहिए थोड़ा, तो समझ में आता है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, ठीक है, सब जगह से बल एक ही जगह आता है, तो सारा बल तुझ में आ गया क्या, मिरड़ वालों के लिए कुछ नहीं बचा। सभी जगह में थोड़ा कम बल एक ही भगवान से आता है, लेकिन हम इतना सारे बल लगा रहे, असुरों का बल लगा रहे, हाथी का बल लगाया, होली का, देवताओं का बल लगाया, अग्निदेव का, हमने सबका बल तुझ में लगाया मारने के लिए, फिर भी तू नहीं मर रहा है। तो हमारा प्रश्न यह है कि सारा भगवान का बल तुझे भी आ गया कैसे, कैसे संभव है, तुझ में ही आ गया, सब में बल है तो हमें भी बल होना चाहिए, लेकिन तेरा ही बल काम कर रहा है, हमारा फैल जा रहा है। तब प्रहलाद ने जो उत्तर दिया नरसिंह पुराण में, जो इससे संबंधित है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि सब शक्ति भगवान के नाम में है, और जो भगवान का नाम लेता है उसमें भी सारी शक्ति आ जाती है। दूसरे शब्दों में कि भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसको और कोई शक्ति मार नहीं सकती, और भगवान का जो नाम लेता है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। राम नाम जपता कुतो भयम, आप पूछ रहे हैं ना मुझे भय क्यों नहीं, अरे जो राम नाम लेता है उसको किसका भय। त्रिविध ताप शमने का औषधम, ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली एक ही औषधि है, ये नशी औषधि माया नासी बार लागी, सही हरि नाम मंत्र गौरांग महाप्रभु ने लव तुम्हें भाई। और क्या हुआ पिताजी, जब आप हमें अग्नि प्रवेश करा रहे थे ना, अग्नि में डाल दिया गरम तेल की कढ़ाई में, या हमारी बुआ जी धुआं हो गई हमको लेकर आई तो अग्नि में, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं राम नाम जप रहा था, हरि नाम ले रहा था, और हरि नाम के प्रभाव में हमें इतना बल मिला कि पाव कोपी सलिलायते धुना, वो अग्नि की तेज प्रचंड ज्वाला हमें गंगा जी के शीतल धारा जैसी लग रही है, हमको लग रहा था कि हमारा अभिषेक है, हमको तो अभिषेक महसूस हो रहा था, लेकिन ये किसका बल था, हरि नाम का बल था। तो मतलब ये प्रहलाद के प्रसंग से ये प्रमाणित होता है कि जो हरि नाम लेता है उसमें भी उसकी विरोधात्मक शक्ति से लड़ने का बल आ जाता, क्योंकि सारी शक्ति भगवान के नाम में है, और वो जो नाम ले रहा है तो उसमें भी शक्ति प्रवेश होता है, क्योंकि कृष्ण काल के भी काल है। आप कहोगे भाई प्रेम से लेता है तो ही होगा, नहीं, भागवत 1.1.14 प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14 नंबर श्लोक, आपन्न संस्कृतिम घोरा यन नाम विवशो गृणन, लिखा गया है कि विवशता से भी आप हरि नाम लो, यद विभेति स्वयं भयम्, काल भी जिससे डरता है उस कृष्ण का नाम आप लोगे तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उदाहरण है ध्रुव, दूसरे बच्चे का उदाहरण चौथे स्कंद में, काल के माथे पर सर लेकर गया भगवत धाम, उसी शरीर से गया, नहीं छोड़ना है शरीर, जाओ, ब्रह्मा का नियम फेल कर दिया। हरि नाम लेने वाला क्या नहीं कर सकता विष्णु का पद, इसीलिए लिखा गया राम रक्षा स्तोत्र में, भर्जनम सर्व बीजानाम, अर्जनम सर्व संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। समझ रहे, अर्जनम भर्जनम तर्जनम, हाँ ये संस्कृत है। अर्जन पहला लिखा गया भर्जनम सर्व बीजानाम, भर्जनम मतलब क्या कहते हैं, बढ़तू भजिया बना देना, भून डालना, आपके पाप पुण्य के जितने भी बीज है ना, आप राम राम गर्जनम करोगे ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम रामेति गर्जनम, तो भर्जनम सर्व बीजानाम, सब पाप पुण्य के बीज क्या हो जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, अर्जनम सर्व संपदम, जितनी सुख संपत्ति है आपका, एड्रेस पूछेगी कहाँ रहते हैं प्रभु जी, दहीसर में कहाँ आओ, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब सेवा में लगेगी। और फिर तर्जनम यमदूता नाम, और यमदूत तर्जनम, वो भागते रहते भाई इसके पास मत जाना, बोले इसके पास नहीं इसके पड़ोसी के पास मत जाना, क्योंकि वो कीर्तन गाता है तो इसको भी सुनाई देता है, तो वहां भी हमारा प्रवेश, बोले उस सोसाइटी में मत जाना, और कहीं नगर संकीर्तन निकलता है तो उस ट्रेन में उस स्टेशन पे ही मत उतरना, यमदूत को फैन से बोल दिया, क्योंकि वहां हमारा अधिकार कहां नहीं है, राम रामेति गर्जनम, जहां राम राम का कीर्तन होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस त्रिलोकी में सबसे सौभाग्यशाली वह है जिसके मुख में महामंत्र गूंजता है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमलम प्रध्वंसनम चव्ययम, कितने मधुर मधुर श्लोक है, पढ़ने लायक है हम लोगों, जो ब्रह्म की, जैसे परब्रह्म की बात वेदों में है, लेकिन उस परब्रह्म का अगर समुद्र बनाया जाए और उससे जो निकलने वाला अमृत क्या है, ये राम नाम, ये हरि नाम, ये सब ब्रह्म वेद ब्रह्म करते रहते, हरि नाम जपते नहीं, सब माता पिता घूम गया उन लोगों का, उसको पता नहीं। अरे जितना ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म मतलब भगवान के स्वरूप धाम जो भी, उसका अगर मंथन करके निकलने वाला अमृत क्या है, ब्रह्म अम्बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम च अव्ययम श्रीमद् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। श्रीमद् शंभु कैलास अधिपति वैष्णवानाम यथो शंभु, श्री शंकर जी के मुख चंद्र से जो निस्दिन निकलता है, क्या निकलता है, श्री हरि नाम। संशोभितम श्रीमद् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। त्रिलोकी में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति धन्यास्ते सततम पिबन्ति कौ श्री राम नामामृतम, जो राम नाम का अमृत पीते हैं, कृष्ण नाम का अमृत पीते हैं, वो त्रिलोकी में सबसे धन्य है, क्योंकि पूरे जगत को धारण करने वाली पृथ्वी से प्रकट वाली जानकी का जीवन यही है, सुख करने वाला यही है। और यहाँ तक लिखा गया संसार अमय, ये संसार अमय शब्द कहा जाता है डिसीज रोग, क्या कहते हैं दुख दर्द, अमय मतलब रोग, और औषधि भेषजम मतलब औषधि, संसार अमय भेषजम सुखकरम जानकी जीवनम शंभु मुखेन्दु शोभनम ब्रह्म उपाधि अमृतम प्रगटम कलिमलम नाशनम क श्री राम नामामृतम, श्री राम का कृष्ण का ये नाम, क्योंकि इसमें सब है। जितना दुनिया में मंगल है, जितना ही मधुरता है, जितना आनंद है, जितनी शक्ति है, सब किस में है, हरि नाम में है। और वो जो लेता है वो भी मधुर आनंदमय शक्तिमय हो ही जाता है, प्रेम से जपना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे क्योंकि इसमें सब शक्ति, सारा वेद सारा ज्ञान इसमें। और करुणा क्या किया, ऐसे सुनाएंगे तो दो दो घंटा चला जाएगा। तत्र अर्पित, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित हो गया, लेकिन फिर भी ये हरिनाम लेने में कोई नियम, ये बड़ी सुविधा की बात है। बोला होता सुबह जग के 3 बजे ही जपो, तो पहले दिन जो सत्संग में आता हो तो चला जाता है, लेकिन अच्छा बता रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए है, हम लोग पुराने दीक्षा लेके 10 साल वही अपना दिया, कभी भी बोला ना कभी भी तो जब तू कभी कभी करते होता ही नहीं। लेकिन ये तो कृष्ण की करुणा है कि कोई नियम नहीं, दिन में लो, रात में लो, खाते खाते लो, सोते सोते लो, खाईते सोईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नादि सर्व सिद्धि है। यही महाप्रभु ने दूसरा अनुवाद किया, खाईते सोईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व शुद्धि सर्व सिद्धि है। मतलब कोई नियम, दिन रात दोपहर कभी भी नाम लो भगवान का, कोई रिएक्शन नहीं, प्रत्यवाय नहीं, नुकसान नहीं, अमंगल नहीं होगा, ये भी करुणा है ना कृष्ण की। देखिए कथा है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की, ये जो वक्रेश्वर पंडित थे ना जिसका तिरोभाव है, उसके एक शिष्य थे जिसका नाम था गोपाल गुरु। क्या नाम था? गोपाल गुरु, नाम सुना होगा ना आपने। उसका पहले का नाम मकर ध्वज था। क्या नाम था? वो मुरारी पंडित नाम के एक भक्त थे, उसके पुत्र थे। अब कितने छोटे थे मालूम है, ये 3 साल के 3 या 4 साल के, और मुरारी के पुत्र नाम था मकर ध्वज। लेकिन छोटे बच्चे को हम ऐसे ही गोपाल या बुलाते हैं ना, लाला या है, तो ऐसे ही बोला, लेकिन नाम मकर ध्वज था ओरिजिनली। अब क्या हुआ, ये गोपाल गुरु जो है चैतन्य महाप्रभु मनुष्य लीला भाव में एक दिन क्या कर रहे थे, महामंत्र गाते हुए सोच क्रिया कर रहे। आप कहोगे कैसे संभव? देखिए भागवत के चैतन्य चरितमानस प्रसंग को बढ़िया से समझिए। भागवत में लिखा है कि कृष्ण गोपियों के घर में जाकर सब बिगाड़ देते थे। अरे कृष्ण सच्चिदानंद है, उसमें तो मल मूत्र है ही नहीं, हम तो यही पढ़ते हैं वेदों से, तो फिर आप कह रहे कि गोपियों के घर में बिगाड़ देते थे, लिखा है भागवत में, तो कैसे समझे? सच्चिदानंद में तो मल मूत्र नहीं, उसमें तो सच्चिदानंद है, हाड़ मास मल मूत्र तो है ही नहीं। लेकिन भगवान मानुषिम तनुम आश्रितम, असुरों को विमुट करने के लिए, इसलिए तो गीता में बोले ना विमुढ़ा ना पश्यंती, नराधमा ये सब मूढ़ा उसके लिए नहीं है, योग माया समावृत रहते हैं। अरे देखो पुण्य श्लोक किसे कहते हैं, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर को कहा गया, नल राजा को कहा गया, सीता को कहा गया, कृष्ण को कहा गया। पुण्य श्लोक का डेफिनेशन यह है कि जिसके शरीर में मल मूत्र का विकार न हो उसे कहते हैं पुण्य श्लोक। तो कृष्ण सच्चिदानंद है, कृष्ण पुण्य श्लोक है, तो उसके मल मूत्र है नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद भाई है। तो फिर कैसे कर रहे थे कृष्ण, क्यों ऐसा कर रहे थे, इसका प्रश्न, ऐसा प्रश्न जब हमें प्रकट होता है ना, समझना चाहिए कि भगवान लीला कर रहे हैं। अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते तो यशोदा थोड़ी जानती थी ईश्वर परम कृष्ण, वो क्या कहती थी मेरा, और ऐसा नहीं करते तो वो तो दवाई खा खा के इसको पेट बढ़ा देती, क्योंकि माता को तो यही रहता ना कि मेरे बच्चे को मूत्र क्यों नहीं निकल रहा, ऐसे ही सोचेगी पेट खराब है, कुछ तकलीफ है वो जो भी, क्योंकि वो तो मनुष्य लीला में उस वात्सल्य रस को लूटने के लिए योग माया की अरेंजमेंट थी कि ऐसा प्रकट कराते, जबकि उसमें है, अरे कृष्ण में खून कहा। लेकिन जब बस भीष्म ने बाण छोड़ा तो छाती पर लगते ही कवच टूट गया द्वारकाधीश का, तो खून की बूंदे पसीने की बूंदे, कृष्ण में कहां पसीना है। अरे स्वर्ग में जो रहते हैं देवता, वहां पे भी लिखा गया भागवत में कि देवताओं के शरीर में कभी पसीना नहीं आता, वो वहां लोग फ्लैट ढूंढते ना तो अटैच नहीं ढूंढते, कभी इंद्रदेव सोचा कि चलो फ्लैम खाली करना है तो अभी मीरा दहसर जाएंगे तो अटैच है क्या। स्वर्ग में टॉयलेट बाथरूम है ही नहीं, क्योंकि वहां मल मूत्र की छोड़िए पसीना तक नहीं निकलता, क्योंकि उनके शरीर मिट्टी के नहीं बने ना, मिट्टी के विकार है, वो तो हवा है केवल देवताओं में। जब देवताओं के लोक में यह है तो सच्चिदानंद राज्य में उस परमेश्वर की बात क्या कहें। लेकिन वे ही प्रभु जब लीला करते हैं और अपने वात्सल्य रस को लुटाते हैं तब ऐसा अनुकरण करते हैं असुरों को मोहित करने के, लेकिन मोहित हो जाते हैं ये सुर, क्योंकि मुह्यंती यत, चाहे सुर हो असुर हो, जब तक शरण नहीं लेगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक समझेगा। तो हमें इस भाव में समझना चाहिए। ओके, अब महामंत्र बोल रहे थे, जैसे ही जीभ को बंद करके बैंड करके जीभ को आंगली से पकड़े गौरांग महाप्रभु, बैंड किए, दोनों हाथों दांतों में दबाए, गोपाल गुरु छोटा बच्चा जो था 5 साल का वो देखे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले मेरी जीवा हरि नाम लिए 1 सेकंड रुकती नहीं, लेकिन मैं इस सोच क्रिया गया नाम लेना ठीक नहीं, मुंह बंद रखना चाहिए, लिखा है किसी कुछ कुछ स्थान ऐसे होते जहां मुंह बंद रखना चाहिए, वहां तो क्यों लो। तब इसने कहा कि गोपाल गुरु भी गोपाल गुरु, उन्होंने कहा आप तो भगवान है, कोई नियम आप पर लागू नहीं होता, लेकिन जीव की जहां बात करें हम, सोच करते भी व्यक्ति मर सकता है कि नहीं, और मर गए बिना नाम स्मरण के यम व्यापी स्मरण भाव हो जाएगा, इसलिए कहीं भी कभी भी कैसे भी नाम ले सकते हैं। महाप्रभु ने जीव छोड़ दी, महामंत्र बोलते हुए कहा तुमने मेरा जीवन का सार बता दिया, आज से तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल गुरु। भले तुम छोटे हो लेकिन मेरे भी गुरु हो, सबके गुरु, तुम्हारा नाम ही गोपाल, क्योंकि आपने बताया कि हरि नाम ही न नियम है न काल न देश, हरि नाम नहीं लुब्ध का, जो हरि नाम का प्रेमी है उसके लिए कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी कभी भी ले सकता है, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं, पर हरि नाम ही तो उद्धार करेगा। अब ये गोपाल गुरु की रक्षा की थी चैतन्य महाप्रभु। एक भगत है अभिराम ठाकुर, क्या नाम है? आपने नाम सुना, वो एक चाबुक रखते थे, मारते थे उसको ही हरि नाम प्रेम हो जाता था, वो एक बंसी रखते थे, 32 लोग उठाकर, बंसी होती ना बांस की, वो बांस का टुकड़ा जो पेड़ था, टुकड़ा क्या पेड़, वो 32 लोग मिलके भी नहीं उठा पाते थे, ये ऐसे ही उठा लेते थे, और भक्ति रत्नाकर में तो लिखा है कि 100 लोग मिलके नहीं उठाते, मतलब शक्तिमान थे। अभी वो नित्यानंद प्रभु के द्वादश सखा है ना 12 गोपाल, उसमें से थे ये अभिराम ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में इनका नाम आता है, गौड़ीय वैष्णव में कैलेंडर में भी इसके तिरुभाव आविर्भाव आते हैं। तो वो क्या किए, वो जिसको भी प्रणाम करते ना वो मर जाता, क्योंकि उसका प्रणाम कोई विग्रह भी सहन नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी देवी के मंदिर में गए और प्रणाम किया तो देवी की मूर्ति फट जाती थी, इवन विष्णु के विग्रह में भी कई कई विग्रह फट जाते थे जो प्रमाणिक नहीं होते, और किसी वैष्णव को भी प्रणाम कर दिया ना वो भी फटाक से मर जाता था, क्योंकि इनका प्रणाम का जो ताप था वो सहने की शक्ति किसी में। इवन नित्यानंद प्रभु के 7 पुत्र मर गए इसको प्रणाम कर, ये आते हैं प्रणाम किए ना, 8वां पुत्र वीरभद्र जो हुए बाद में, नित्यानंद प्रभु ने भी 2 विवाह किया जानवा और लास्ट में, वो भी महाप्रभु ने कहा, ये सब कथा है। तब वहां पर ये वीरभद्र को प्रणाम किया, कौन? अभिराम ठाकुर, वो नहीं मरे, तब समझे कि ये चैतन्य महाप्रभु का शक्ति प्राप्त है, ये आगे परंपरा चलाएगा, और फिर उन्होंने खेतुरी में चलाया, ये बड़ी लंबी कथा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिराम ठाकुर एक दिन आए, गोपाल गुरु का नाम सुना कि चैतन्य महाप्रभु इसको गुरु मानते हैं, और इतना छोटा बच्चा बढ़िया उपदेश दे दिया, महाप्रभु ने कान पकड़ लिए, जाके प्रणाम मारता हूँ इनको भी। अभिराम ठाकुर उसी मूड में आए, देखो कुछ भगत लोग ऐसे होते प्रणाम करे मार देते भैया, क्योंकि अपने से बड़े समर्थ होते हैं ना, उसका प्रताप ऐसा होता है, सब लोग डरते थे, कई लोग प्रणाम करने के लिए, प्रभु आप प्रणाम मत करिए, प्रसाद लीजिए, ऐसे ही लीजिए, अब जाके ये प्रणाम करेंगे देखेंगे अब क्या हुआ। वो तो बेचारा, वो तो जानता नहीं गोपाल गुरु, तो अभिराम ठाकुर जैसे ही आए ना तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे इनको, अभिराम ठाकुर, गोपाल गुरु खेल रहे थे न, तो तुरंत उठाए महाप्रभु और गोद में बिठा लिए, किसको? गोपाल गुरु, और अपना ये जो दक्षिण कर का मतलब क्या कहते हैं, राइट हैंड गोपाल गुरु के सर पर ऐसे, 5 वर्ष का बच्चा है सहला रहे, आके अभिराम ठाकुर गोपाल गुरु दंडवत प्रणाम, लेकिन कुछ हुआ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको हाथ रख के बचा लिया, और महाप्रभु ने कहा मेरी शक्ति इसमें है, इसको रहने देना है महाराज। ओके, तो आपकी इच्छा है तो हम क्या कर सकते, ऐसे ऐसे भी भगत हुए बताओ हमारे गौड़ीय दा, इतने प्रताप, मतलब ये इसकी भक्ति का प्रताप था, तेज इतना था, ऐसे वो सबको प्रणाम करते भी नहीं थे, करते तो कितने उलझ जाते, लेकिन कोई पाखंड करता कपट करता इसको ऐसे करते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन गोपाल गुरु, मतलब गोपाल गुरु का नाम आप बहुत सुने होंगे, लेकिन इसकी इसमें कथा है कि कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, उसने बताया और महाप्रभु ने स्वीकार किया। हमारे भक्त लोग तो बताते हैं वृंदावन के एक हनुमान जी महाराज थे, हनुमान जी महाराज राम नाम के प्रेमी है ना, उसके तो रोवे से भी राम निकलता है। एक दिन हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति शौच क्रिया कर रहा है, शौच क्रिया करते हुए राम राम ले रहा। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, ये साला शौच क्रिया कर रहा है और हमारे प्रभु का नाम ले रहा है इतनी गंदी अवस्था में। एक गदा उठा के दिया उसको और बेचारा उधर ही गिर गया। चुप रहे, बुद्धि नहीं है कि कब लेना चाहिए। वो तो सुनने लायक भी नहीं रहा था, कोमा में ही था। अब क्या हुआ, हनुमान जी पहुंचे अयोध्या में राम जी के पास। अब राम जी सोए थे तो हनुमान जी चरण सेवा कर रहे थे, तो चरण सेवा करते ही प्रभु थोड़ा इस तरफ हो जाइए, तो जैसे ऐसा किया ना तो राम जी की पीठ पे बड़ा सा लाल धब्बा था। अरे प्रभु आपको क्या हुआ, किसने मारा? बोले तूने मारा। अरे मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं तो आपको चरणों का दास हूँ, तूने सुबह उठा के गदा नहीं दिया? बोले आपको कहाँ दिया, वो तो वो सोच कर रहा था उसको दिया, क्यों मारा उसको? अरे आपका मंगलमय पवित्र नाम जो बाथरूम जा रहा है उधर ले रहा है। राम जी ने कहा कि जो मेरा नाम लेता है उसकी रक्षा मैं करता हूं और उसका मार मैं खाता हूं, और प्रमाण यह कि वो जिंदा है, नहीं तो तेरी गदा खाने वाला कभी जिंदा रहेगा? वो मैंने खाया था, क्योंकि तू तो एक उल्टा हाथ का उस दिन दिया था रामलीला में भी, वो इंद्रजीत को, वो भी कोमा में चला गया था बेचारा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी ने एक दिया उसको, लक्ष्मण को इंद्रजीत ने मारा ना बाण ब्रह्मा, मतलब वो सुला दिया, तो बोले उठा के ले जाऊंगा, तो हनुमान जी आ गए बीच में और इंद्रजीत को एक उठा के दिए तो चक्कर खा के उधर ही गिर गया कोमा में, और लक्ष्मण जी को उठा के हनुमान जी चले गए। और हनुमान जी ने सोचा तेरा अभी समाप्त कर देता, लेकिन मेरा रोल नहीं है इसमें अभी, ये तो एक्शन नहीं था, फिर भी मुझे आना पड़ा, डायरेक्टर बोला नहीं मेरे को, ये तो अभी तेरा काम खत्म, लेकिन तेरे को राम जी करेंगे, लेकिन अभी कोमा में तो डाल ही सीन नहीं था, फिर भी पहुंच गए हनुमान जी। तो हनुमान जी का पावर इतना है, उसकी गदा कौन खा सकता है? लेकिन राम जी ने कहा कि जो मेरा नाम लेता है ना उसको मैं कष्ट होने, मैं खुद सह लेता हूँ। जैसे हरिदास ठाकुर, याद कराओ आपको महाप्रकाश लीला में, वो 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बताया अपने सुवर्ण वर्ण गौरांग अपने पीठ पर कि लाल लाल चाबुक के लग गए हैं निशान, किसने? महाप्रभु ने कहा हरिदास वो जल्लाद तुमको चाबुक से मार रहे थे, तुमको दर्द हो रहा था? बोले नहीं, कैसे होगा? बोले मुझे तो फूल बरस रहे थे। बोले मैं खा रहा था। क्यों खा रहे थे आप? बोले तेरे को मार खाते देख नहीं सकता ना, तो उसको मार सकते हो ना बिना शायद? बोले उसको भी नहीं मार सकते, तूने मना किया था। हरिदास ठाकुर इतने प्रेमी थे प्रभु, ये पापी लोग उसको पता नहीं है, माफ कर दो इसको, कुछ मत करना। तो उसको मार नहीं सकता, तुमको मार खाते दे नहीं सकता, देख नहीं सकता, अब करूं क्या? इसलिए वो, और तुम्हारी निष्ठा खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, राय राय जितने खंड खंड मेरा सरसों के दाने के टुकड़े कर दो, जब तक जीवन में श्वास चलेगा महामंत्र में छोड़ूंगा नहीं। ये हरिदास का वाक्य था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, इतनी नाम में निष्ठा थी तो महाप्रभु कैसे मार खाने देते। तो जहां तक प्रहलाद की बात है, आग में जलने नहीं दिया, हनुमान जी की बात है या गोपाल गुरु की बात है या हरिदास, इन प्रसंगों से हमें ये बात सिद्ध होती है कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी अवस्था में हरि नाम ले सकता है, उसका क्या होगा? मंगल ही होगा, उद्धार ही होगा। रामायण में तो यहां तक लिखा है भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी। आप भाव से लीजिए चाहे बिना भाव के लिए हूं, या फिर अनख, अनख शब्द का होता है क्रोध से लीजिए, या आलस, आलस से लीजिए। अरे कृष्ण क्या बोला, ऐसे लेते हैं भगत लोग, आलस में लेते हैं। आप कैसे भी लीजिए, अगर आप नाम ले रहे हैं तो आपका मंगल ही मंगल, एक दिशा से नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यज्ञ नेतृत्व, ये चार कोण, अप एंड डाउन, अब दसों दिशाओं से आपका क्या होगा, क्योंकि मंगलेभ्यो भी मंगलम पावनेभ्यो भी पावनम मधुरेभ्यो भी मधुरम श्री हरे नाम। हरि नाम में ये शक्ति है, ये करेगा। तो गोस्वामी को किसी ने पूछा कि आप बोल रहे हो कि कैसे भी लो उद्धार होगा, किसी का हुआ? बोले हुआ ना, भाव सहित शंकर जपे। शंकर जी कैसे जपते हैं? भाव से जपते हैं, काशी में भी मुक्ति देते राम नाम। तो कुभाव से कौन जपा? भाव कुभाव अनख आलस। बोले कुभाव से मुनि बाल, वाल्मीकि मुनि कैसे जपा? मरा मरा बोल रहा था, राम भी नहीं निकल रहा था, लेकिन उल्टा नाम जपत हो गया ना वाल्मीकि ब्रह्मर्षि। बोले आलस से कौन जपा? मीरा रोड के भगत का नाम आएगा किसी का? आलस से कौन जवाब है? लेकिन इतना आलस नहीं है जिसका नाम आ जाए गिनीज बुक में। एक ही हुआ, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का पता है आपको स्टोरी ना? कुंभकर्ण को जब जगाया जा रहा है तो बड़े बड़े नौकीले भाले लेकर उसकी पेट में खोचे जाते थे, कान में खोचे जाते थे, और जैसे ही बहुत दर्द बहुत जगह से आवाज तैसे उधर क्या है तो कहते, अरे हमारे लंका पर चढ़ाई हो गया है, तुम्हारे भाई की जान खतरे में, कितने तुम्हारे भतीजों को मार दिया, कौन मारा? राम। राम फिर सो जाता था। अरे बोले इसको उठा, फिर नौकीले भाले लगाए, फिर तलवार लगाए, पानी ठंडा गिराओ, गर्म पानी डालो, ये डालो, फिर जाके क्या है? अरे इंद्रजीत की जान खतरे में है, जो आया है दशरथ का लड़का अयोध्या का सरकार, और वो उसने युद्ध छोड़ दिया है, पूरा हमारा लंका नष्ट भ्रष्ट हो गया है, आधे लोग तो ऐसे ही मर गए, कौन है? राम। राम फिर सो जाता था। ऐसे ही राम नाम जप रहा था, राम, ये लोग फिर जगा देते, फिर सो जाता। ऐसे कई बार राम राम करते ही क्या हो गया? बेड़ा पार हो गया इनका। और इसका बड़ा भाई रावण क्रोध से जपता था, कौन आया है? क्योंकि वो जब भी एंट्री सुनता था, राम का दूत आया, हनुमान ने कमाल कर दिया, अंगद आया, उसने भी, तो सब राम, और दिन रात भी मंदोदरी भी कहती थी राम, ये एन केन प्रकार ने राम का ही नाम, राम की ही कथा उसको सुनने आ रहे थे। और ये क्या करता था? अहंकार में क्रोध करता था। लेकिन वो भी अब बताओ, इतना मंगलकारी नाम है जो क्रोध से लेने पर, आलस पर लेने पर भी परिणाम मंगल करता है, तो फिर प्रेम से जपा जाए, उसके लिए तो भगवान अपना गोलोक छोड़कर उसका दास बन जाते हैं, जो हरि नाम प्रेम से ले। कई कथाएं हैं, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कहा है, जो आप श्लोक शायद जानते होंगे, कि तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, हे कृष्ण मुझे एक जीव नहीं चाहिए, लाखों लाख जीव दीजिए, ताकि मैं लाखों जीवों से, जीव से, टंग से, लाखों रसना से मैं आपका लाखों नाम लेता रहूं। और फिर नाम सुनने के लिए बोले दो कान नहीं, क्रोध कदंब यति घटयते कर्ण अर्बुदेभ्य स्प्रिहाम। अर्बुद मतलब करोड़, मुझे कान कितने चाहिए? करोड़ कान चाहिए। क्यों भाई? तुमको कृष्ण नाम लेने के लिए लाख जीव चाहिए और कृष्ण नाम सुनने के लिए करोड़ कान चाहिए, क्या है ऐसा? तो कहते चेत प्रांगण संगिनिम विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिते कियत भि अमृते कृष्णे तिवर्णद्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ढाई अक्षर, दो अक्षर में कितना अमृत पड़ा है, कितना मधुर प्रेम रस पड़ा है, कि मुझे लोभ हो रहा है, पता नहीं क्या है कृष्ण नाम, कि ये भी मुझे कम लग रहा है। हमारे अनुराग पद्यावली में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि वह आत्मा बेकार है जिसको करोड़ शरीर न हो, है लाख लाख कोटि में भी घूमना भारी हो रहा है। ये कह रहे एक आत्मा को कितने शरीर होने चाहिए? करोड़। और वो करोड़ शरीर बेकार है जिसमें करोड़ मुख न हो, और वो करोड़ मुख बेकार है जिसमें करोड़ जिह्वा न हो, और वो जिह्वा बेकार है जिसमें करोड़ नाम न हो। ऐसी आशाएं करते हैं, और हमें सोलह माला में भी नानी मर रही, हमारी दशा है। तो ये तो मैं दो ही श्लोक में मेरा टाइम हो गया, अनुराग तो नहीं हो रहा है, ये तो रही गया। ये हम समझ रहे हैं कि न नियमेन, अच्छा इसमें तो नहीं लिखा, न नियमेन कालम, भगवान के नाम में इतनी करुणा, कोई नियम नहीं, कैसे भी लिया जाए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, इनकी कृपा की बात है। अगर साधक को शीघ्रता से प्रेम तक पहुंचना है, इस जगत से मुक्त होना है, तो नियम से और प्रेम से लेना पड़ेगा। अनियम से, कुभाव से लोभी तो भी मंगल तो दे करेगा ही करेगा, लेकिन अपराध से रहित होने, क्योंकि इसमें अपराध का चांस हो जाएगा, आलस करोगे अपराध हो जाएगा, अहंकार करोगे अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपराध करता हूँ। तो अनर्थ शब्द दुर्भाग्य कहाँ है? दुर्भाग्य मतलब अनर्थ, जो हमें हरुनाम में अनुराग नहीं होने दे रहा है। और इसको अनुराग लाने के लिए उस अनर्थ को हटाना पड़ेगा। अनर्थ क्या है? चार प्रकार के है, और एक एक में फिर चार है। ये सब बड़ी व्याख्याएं हैं, कभी करेंगे नेक्स्ट टाइम, कभी अवसर मिला तो। लेकिन आज के इस प्रवचन में हम ये समझ रहे हैं कि भगवान के नाम में सभी शक्ति है, भगवान के नाम अनेक अनंत है, और हम पर कृपा करने के लिए प्रभु नाम रूप में, कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार। और जितने भी कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे श्री संप्रदाय हो, ब्रह्म हो, रुद्र हो, और उसके प्राचीन या अर्वाचीन कोई भी आचार्य हो, जिसने भी गति या भक्ति या भगवत धाम पाया है तो हरि नाम से ही पाया है, और कोई उपाय से नहीं। ये हम शास्त्रों से मिलते हैं। इसीलिए हमें जीवन में निर्णय करना है कि हे गिरधारी, हे जगन्नाथ जी, आपकी रथ यात्रा आ रही है, रथ यात्रा में महाप्रभु ने जो कीर्तन किया भक्तों से सुनेंगे, और उसी भाव में हमें भी रात दिन हरि नाम में मन लगाना है, वाणी लगानी है, और उसमें मन वाणी लगाने के लिए हमें वैष्णवों की संगति अर्थात सेवा करनी है, क्योंकि एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। भक्तिनो ठाकुर ने ये गाया ना वैष्णव ठाकुर की लाइन में कि हरि नाम है इतनी महिमा फिर भी मुझ में बल नहीं, लेकिन हे वैष्णव आप कृपा करिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं हरि नाम जप सकूं। इसलिए हमें गिरधारी समाज भक्तों के संग में प्रेम आदर से रहते हुए और अपना आलस अहंकार छोड़ते हुए तन मन धन से जगन्नाथ जी की गिरधारी की सेवा करनी है। इसी से हमारा संबंध है। हम करी योनियों से घूम रहे हैं जन्म मृत्यु में, और ये नकली शरीर नकली संबंध मोह माया में फंसे हैं। ठीक है, उसको निभाएंगे, लेकिन जगन्नाथ गिरधारी को छोड़ के नहीं, उनके नाम को छोड़ के नहीं। तो बस उनके नाम का आश्रय लीजिए आप कृष्ण के नाम पर, तो कृष्ण आपके काम पर। इसलिए हमारे नव योगेंद्र महाराज कहते थे ना कि तू इतना जप कर कि हद कर यमराज के दरबार में अपना खाता रद्द कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो धन्यवाद आप सभी जो खड़े खड़े सुन रहे, सोए सोए सुन रहे, बैठे बैठे सुन रहे, सभी भक्तों को पीछे से भी सुन रहे, उन सबको हरि नाम जपिए और दास को आशीर्वाद दीजिए हरि नाम।